चैप्टर 26 प पंच पंचीकरण। वेदांत मतानुसार प्रत्येक स्थूल भूत में शेष चार भूतों के अंश भी विद्यमान रहते हैं। यह विद्यमानता एक विशेष पद्धति से होती है। पांचों भूतों को पहले दो बराबर भागों में विभक्त किया जाता है। इसके पश्चात प्रत्येक के प्रथमार्थ को चार भागों में बांटा जाता है। फिर इन 20 भागों को अलग अलग रखा जाता है। अंत में एक एक भूत के द्वितीयार्थ में इन 20 भागों में से चार चार भाग फिर से इस प्रकार रखें कि जिस भूत का द्वितीयार्थ हो उसके अतिरिक्त शेष चार भूतों का एक एक भाग उसमें आ जाए। वेदांत में इसे ही पंच पंचीकरण कहते हैं। आचार्य शुक्ल ने भावों के व्यवस्था चक्र के अंतर्गत भी इसी पद्धति पर एक भाव चक्र के भीतर अन्य कुछ भावों की स्थिति मानी है। उदाहरण, पाश्चात्य भाववेत्ता शैंड के भाव निरूपण के अनुसार प्रत्येक भाव एक प्रकार की व्यवस्था चक्र है, जिसके साथ शेष भावों का संबंध भी अव्यक्त रूप में लगा रहता है। क्रोध, भय, आनंद और शोक जो मूल भाव कहे गए हैं, उनमें से प्रत्येक का संबंध बाकी औरों से रहता है। क्रोध को ही लीजिए, इसके लक्ष्य की पूर्ति न होने पर शोक या विषाद, पूर्ति हो जाने पर आनंद, कठिनाइयां दिखा देने पर पूर्ति न होने की आशंका तक हो जाती है। भूतों के पंच पंचीकरण की सी व्यवस्था समझिए। रसमीमांसा पृष्ठ संख्या 198। पद लालित्य, पद संघटना का सौंदर्य। उदाहरण, अतः खड़ी बोली की कविता में पद लालित्य कल्पना की उड़ान, भाव की वेगवती, व्यंजना वेदना की विवृति, शब्द प्रयोग की विचित्रता इत्यादि अनेक बातें देखने की आकांक्षा बढ़ती गईं। हिंदी साहित्य का इतिहास पृष्ठ संख्या 647। पतत प्रकर्ष, जहां बंद का प्रकर्ष क्रमशः गिरता हुआ ही दिखाई दे वहां पतत प्रकर्ष दोष होता है। उदाहरण, प्रभाववादियों के अनुसार किसी काव्य की ऐसी आलोचना की, यहाँ पद का निर्वाह बहुत अच्छा हुआ है, यहाँ गति भंग है, यहाँ रस विरोध है, यहाँ रस है, यहाँ चित संस्कृति या पतत प्रकर्ष है, कोई आलोचना नहीं है। हिंदी चिंतामणि भाग 2 पृष्ठ संख्या 93। पद्मिनी, काम शास्त्र के अनुसार स्त्रियों के चार भेदों में से एक। रति मंजरी के अनुसार पद्मिनी के लक्षण इस प्रकार हैं: भवति कमल नेत्रा, नासिका छुद्र रंध्रा, अविरल कुछ युग्मा, चारु केशी कृशांगी, मृदु वचन सुशीला, गीता वाद्यानुरक्ता, सकल तनु सुवेशा, पद्मिनी पद्मगंधा। वहाँ उदाहरण, वहाँ सिंघल द्वीप में पर पद्मिनी स्त्रियों को पाया जाना गोरखपंथी साधुओं की कल्पना है। जैसी ग्रंथावली भूमिका पृष्ठ संख्या 25। परंपरित रूपक में एक रूपक का अभेदा रूप दूसरे रूपक के अभेदा रूप का कारण होता है। यत्र कश्चिद् आरोपः परारोप कारणम्। साहित्य दर्पण दशम परिच्छेद पृष्ठ संख्या 716। उदाहरण, अधिकतर देखा जाता है कि निरंग रूपक में तो सादृश्य और साधर्म्य का ध्यान रहता है, पर सांग और परंपरित में इनका पूरा निर्वाह नहीं हो पाता और जल्द ही हो भी सकता है। जैसे ग्रंथावली भूमिका पृष्ठ संख्या 111। परम कल्पना, मानवीय कल्पना से परे सर्वव्यापी परम तत्व के द्वारा की जाने वाली कल्पना। कवि ब्लेक ने जीवात्मा से परे परमात्मा की सत्ता की भांति मानवीय कल्पना से परे परम कल्पना का अस्तित्व स्वीकार किया था। उसके अनुसार प्रकृति के नाना रूप उसी परम कल्पना की छाया है। मानवीय कल्पना उसी परम कल्पना की अंश लब्धि है। संभवतः ब्लेक की इस अवधारणा के पीछे बर्कले 1685 से 1753 ईस्वी का आदर्शवादी दर्शन कार्य कर रहा था। बर्कले के अनुसार भौतिक पदार्थों की स्वतंत्रता सत्ता नहीं है, सभी प्रत्यक्ष संवेदनाओं का मूल कारण ईश्वर है। ईश्वर ही सौंदर्य के अवधारणा का मूल स्रोत है। यह बाह्य जगत जिसका बोध हमें इंद्रियों के माध्यम से होता है, वस्तुतः असीम सर्वशक्तिमान मनस में विद्यमान रहता है। यह मनस ही इसका आधार है। उदाहरण, सूफियों के कल्पनावाद की गंध पाकर ब्लेक ने, कुछ कुछ बर्कले ने के इशारे पर परमात्मा के समान दृश्य जगत से परे परम कल्पना का प्रतिपादन किया और मनुष्य कल्पना को उस परम कल्पना का अंग या अंश लब्धि माना। प्रकृति के नाना रूप जिसकी छाया है चिंतामणि भाग 2 पृष्ठ संख्या 116। परम भाव विराट सत्ता। उदाहरण, सारी सृष्टि उसी परम भाव में लीन होने को बढ़ती जान पड़ती है, पर साधना पूरी हुए बिना कोई यों की इच्छा मात्र करके नहीं पहुंच सकता। जैसे ग्रंथावली भूमिका पृष्ठ संख्या 55। परमार्थ पक्ष। प्रसिद्ध जर्मन दार्शनिक कांट ने ज्ञान की मीमांसा दो स्तरों पर की, प्रथम शुद्ध बुद्धि के स्तर पर और द्वितीय व्यवहारिक बुद्धि के स्तर पर। इसके लिए उन्होंने दो ग्रंथों की रचना की, शुद्ध बुद्धि समीक्षा और व्यवहारिक बुद्धि समीक्षा। कांट ने प्रतिपादित किया कि ईश्वर, जगत और आत्मा आदि की सत्ता शुद्ध बुद्धि के स्तर पर सिद्ध नहीं होती। उनके अनुसार शुद्ध बुद्धि द्वारा हम नाम रूपात्मक भौतिक प्रपंच से परे वस्तु तत्व तक नहीं पहुँच सकते। उदाहरण, परमार्थ पक्ष। परमार्थ पक्ष में ईश्वर, जगत और आत्मा को पक्ष विपक्ष दोनों के प्रमाणों के खंडन द्वारा असिद्ध ठहराकर व्यवहार पक्ष में उन्होंने ईश्वर, अमर आत्मा और अनंत जीवन सबका प्रतिपादन किया। चिंतामणि भाग 2 पृष्ठ संख्या 79। परा। चेतन प्रकृति संपूर्ण जगत को धारण करने वाली जीव रूप चेतन प्रकृति ही परा प्रकृति है। उदाहरण, अद्वैतियों के अनुकूल यदि हम विरची एक लागी दुई डारा का अर्थ करना चाहें तो जीव और जगत जड़ को क्रमशः ब्रह्म के श्रेष्ठ और कनिष्ठ स्वरूप, जिन्हें गीता में परा और अपरा प्रकृति कहा गया है, मानकर कर सकते हैं। जैसे ग्रंथावली भूमिका पृष्ठ संख्या 152। परात्परवाद। वह सिद्धांत जो तत्वों को स्थूल, सूक्ष्म, अंतर, बाह्य, भौतिक, आध्यात्मिक सीमाओं से परे निर्दिष्ट करता है। उदाहरण, पारमार्थिक दृष्टि से वह परात्परवादी है। आत्मा और भूतों के बीच संबंध स्थापित करने वाला तत्व वह दोनों से परे बताता है। हिंदी साहित्य का इतिहास पृष्ठ संख्या 712। परिकरांकुर। जहाँ विशेष्य का प्रयोग साभिप्राय किया जाए वहाँ परिकरांकुर अलंकार होता है। उदाहरण, रतन चला भा धर अंधियारा, परिकरांकुर। जैसे ग्रंथावली भूमिका पृष्ठ संख्या 116। उदाहरण, भव बाधा कहने से कोई विशेष रूप सामने नहीं आता, सामान्य अर्थ ग्रहण मात्र हो जाता है। इसी से गोस्वामी जी उसे व्याल का गोचर रूप देते हुए परिकरांकुर अवलंबन करते हुए कहते हैं, तुलसीदास भव व्याल ग्रसित तब सरन उर गरिपु गामी। गोस्वामी तुलसीदास पृष्ठ संख्या 99। परिणाम। जहाँ स्वतंत्र रूप से कार्य साधन में असमर्थ उपमान उपमेय से अभिन्न होकर कार्य साधन करता है वहाँ परिणाम अलंकार होता है। उदाहरण, नैन नीर सो पोता किया तस मद चुआ बराज दिया। परिणाम। जैसे ग्रंथावली भूमिका पृष्ठ संख्या 116। परिणामवाद। ब्रह्म को कारण और जगत को उसका कार्य मानना परिणामवाद है। दूध का दही में बदल जाना परिणाम है। यहाँ दूध कारण है और दही कार्य। परिणामवादी कार्य को भी सत्य मानते हैं। परिणामवाद दो प्रकार का होता है, विकृत और अविकृत। दूध का दही के रूप में बदलना विकृत परिणाम है, किंतु कनक का कुंडल में बदलना अविकृत परिणाम है। वल्लभाचार्य जी जगत को ब्रह्म का अविकृत परिणाम मानते हैं। उदाहरण, इस विवर्तवाद की प्रतिष्ठा शंकर ने परिणामवाद के प्रतिषेध में की है। सूरदास पृष्ठ संख्या 49। परिवर्तनवाद। समाज के वर्तमान ढांचे को सर्वथा जर्जर मानकर उसमें आमूल परिवर्तन की प्रबल आकांक्षा व्यक्त करने वाले सिद्धांत। उदाहरण, इतना अवश्य दिखाई पड़ता है कि इस परिवर्तनवाद के प्रदर्शन की प्रवृत्ति अधिक हो जाने से जगत और जीवन के नित्य स्वरूप की वह अनुभूति नए कवियों में कम जग पाएगी जिसकी व्यंजना काव्य को दीर्घायु प्रदान करती है। हिंदी साहित्य का इतिहास पृष्ठ संख्या 646। परिसंख्या। जहाँ किसी वस्तु की अनेक स्थानों पर स्थिति संभव होने पर भी अन्य स्थानों पर निषेध करके एक स्थान पर दिखाया जाए वहाँ परिसंख्या अलंकार होता है। उदाहरण, बात की काट छाट वाले अलंकार जैसे परिसंख्या यद्यपि जैसी में कम है, पर कई प्रसंगों में जहाँ किसी पात्र का वाक्य चातुर्य दिखाना कवि को इष्ट है वहाँ श्लेष और मुद्रा अलंकार का आश्रय बहुत लिया है। जैसे ग्रंथावली भूमिका पृष्ठ संख्या 117। परोक्षवाद। व्यक्त जगत से परे किसी अव्यक्त असीम अपरिभाषीय सत्ता में विश्वास करने वाला सिद्धांत। आधुनिक युग में भी अनेक दार्शनिक अज्ञात शक्ति में विश्वास करते हैं। उदाहरण, रहस्यवाद को लेकर जो प्रतीकवादी संप्रदाय यूरोप में खड़ा हुआ उसने परोक्षवाद का सहारा लिया। चिंतामणि भाग 2 पृष्ठ संख्या 111। पर्याय युक्ति। जहाँ व्यंग अर्थ का उक्ति वैचित्र्य पूर्वक कथन हो वहाँ पर्याय युक्ति अलंकार होता है। उदाहरण, पुनि धनी सिंह उरे है लागे, ऐसी ही विथा रैनी सब जा गई। जैसे ग्रंथावली भूमिका पृष्ठ संख्या 116। उदाहरण द्वितीय, सीता हरण तात जनी कहे पिता सन जाई, जो मैं राम तो कुल सहित कहा ही दसानन आई। यह पर्यायोक्ति राम की धीरता सुशीलता की व्यंजना से कैसी सहायता करती हुई बैठती है। गोस्वामी तुलसीदास पृष्ठ संख्या 94। पर्यायोक्ति का आश्रय लोग स्वभावतः किस अवस्था में लेते हैं यह राम का इन शब्दों में आज्ञा मानना बता रहा है। नाथ लखन परु देखन चहई, प्रभु सकोच डर प्रगट न कहई। गोस्वामी तुलसीदास पृष्ठ संख्या 95। पशुचारण काव्य पेस्ट्रोलल पोएट्री। मानव जाति के विकास क्रम में एक ऐसा समय भी आया था जब वह पशुओं के साथ स्वच्छंद विचरण करता हुआ मुक्त जीवन व्यतीत करता था। इस जीवन के संस्कारों को केंद्र में रखकर लिखा गया काव्य पशुचारण काव्य होता है। उदाहरण, यवन देश यानी कि यूनान के पशुचारण काव्य पेस्टोरल पोएट्री का मधुर संस्कार यूरोप की कविता पर अब तक कुछ न कुछ चला ही आता है। सूरदास पृष्ठ संख्या 99। पांच कोतवाल काम क्रोध मद मोह लोभ, इन पांच विकारों से तात्पर्य है। उदाहरण, पांच कोतवाल काम क्रोध आदि विकार हैं। जैसी ग्रंथावली भूमिका पृष्ठ संख्या 62। पाद पूत्यर्थ, किसी पद या छंद की पूर्ति के लिए लाया गया भर्ती का शब्द। उदाहरण, गोस्वामी जी के वाक्यों में कहीं शैथिल्य नहीं है, एक भी शब्द ऐसा नहीं है जो पाद पूत्यर्थ रखा हुआ कहा जा सके। गोस्वामी तुलसीदास पृष्ठ संख्या 108। पानक रस न्याय, अनेक उपादानों के संयोग से उन उपादानों से भिन्न सुंदर वस्तु तैयार होने के दृष्टांत में पानकर संन्याय उक्ति का प्रयोग किया जाता है। रस निष्पत्ति पानकर न्याय से होती है। विभाव अनुभाव संचारी भाव आदि उपादानों के संयोग से रस जैसी एक अलौकिक आनंदमयी अनुभूति निष्पन्न होती है, यह पानकर रस न्याय से ही संभव होती है। उदाहरण, ईशा अर्थात ईर्ष्या के अंतर्गत बाधित अभिमान क्रोध विषाद अपनी उन्नति से नैराश्य इत्यादि कई भावों का गूढ़ न्यास पाया जाता है, पर ये सब चित्त विकार उस भाव की ठीक ठीक प्रतीति नहीं करा सकते जिसे ईशा कहते हैं। पान का रस न्याय से ही उसकी प्रतीति होती है जो केवल आस्वाद्य या प्रत्यक्षानुभव गम्य है, शब्द गम्य नहीं है। पारनेसियन फ्रांस के कवियों का एक वर्ग जो 19वीं शती के उत्तरार्ध में स्वच्छंदावाद के विरुद्ध उठ खड़ा हुआ था। ये लोग कविता के रूप तत्व को विशेष महत्व देते थे और काव्य को साध्य मानते थे। इन कवियों ने अपने सिद्धांत के समर्थन में 1866 ईस्वी से 1876 ईस्वी के बीच तीन काव्य संग्रह प्रकाशित किए। इन कवियों के नाम है लेकोनेट डी लिसले, कैटुअल मेंडिस, मेलार्म, वर्लेन, सली प्रोडुमेन। उदाहरण, स्वच्छंदतावाद जब हद के बाहर जाने लगा और काव्य के विषय ऊंट पटांग तथा वर्णन शैली शिथिल और असक्त होने लगी, तब सन 1866 ईस्वी में उसके प्रतिवाद के रूप में कला का उद्देश्य कला का सिद्धांत लेकर कुछ लोग बड़ा खड़े हुए। ये लोग पारनेसियन कहलाए। चिंतामणि भाग 2 पृष्ठ संख्या 108। पिंगला ऋण की दाई ओर, ऋण की दाई ओर इला और ऋण की दाई ओर स्थित नाड़ी, इसे चंद्र नाड़ी या यमुना भी कहते हैं। उदाहरण, मेरुदंड ऋण की बाई ओर इला और दाहिनी ओर पिंगला नाड़ी होती है। जैसे ग्रंथावली भूमिका पृष्ठ संख्या 62। पुनरुत्थान काल यूरोप में 14वीं सदी के मध्य 16वीं सदी के मध्य तक का युग पुनरुत्थान काल होता है। इस युग में मानव चेतना के विकास क्रम में अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ। अंधविश्वास के स्थान पर वैज्ञानिक जीवन दृष्टि का आरंभ हुआ। सामंतशाही व्यवस्था के स्थान पर पूंजीवाद का उन्मेष हुआ और इस व्यक्ति स्वातंत्र की भावना प्रबल हुई, कला और साहित्य के क्षेत्र में मानव की प्रतिष्ठा हुई। इस जागरण का आरंभ इटली से हुआ, इसके बाद स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड आदि देशों में इस जागरण का आलोक फैला। इस सांस्कृतिक जागरण को रेनेसांस नाम का फ्रांसीसी इतिहासकार मिशले 1798 से 1874 ईस्वी ने दिया। पुनर्जागरण का प्रामाणिक इतिहास नीत्शे के गुरु बुर्कहार्ट 1818 से 1897 कृत कल्चर ऑफ द रेनेसांस इन इटली है। भारतवर्ष में अंग्रेजों के आगमन के बाद उनकी जीवन दृष्टि के प्रभाव स्वरूप एक नवीन चेतना का उन्मेष 1850 से 1900 ईस्वी हुआ। इस उन्मेष के परिणाम स्वरूप ब्रह्म समाज, प्रार्थना सभा, थियोसोफिकल सोसाइटी, आर्य समाज आदि धार्मिक सांस्कृतिक आंदोलन सामने आए। इसे भारतीय पुनर्जागरण काल माना जाता है। हिंदी साहित्य के इतिहास में आधुनिक युग का भी श्री गणेश यहीं से माना जाता है। उदाहरण, यह उस प्रवृत्ति नूतन सृष्टि निर्माण की प्रवृत्ति का हद के बाहर पहुंचा रूप है, जिसका आरंभ यूरोप में एक प्रकार से पुनरुत्थान काल के साथ ही हुआ। रसमीमांसा पृष्ठ संख्या 320। पुनरुक्ति, एक प्रकार का अर्थ दोष। यह एक बार प्रतिपादित अर्थ को पुनः प्रकारांतर से प्रतिपादित किया जाए तो पुनरुक्ति दोष होता है। उदाहरण, सूखे सर्वर के फटने का भाव 3 जगह लाया गया। इसी प्रकार बहुत सी पुनरुक्तियां हैं जिनके कारण पाठकों को कभी कभी विरक्ति हो जाती है। जायसी ग्रंथावली भूमिका पृष्ठ संख्या 208। पूर्वी रंग, पूर्वी देशों की सांस्कृतिक चेतना का वैशिष्ट्य। उदाहरण, दुनिया जानती है कि जब से फारसी और संस्कृत के काव्यों के अनुवाद यूरोप के भिन्न भिन्न देशों में होने लगे, तभी से पूर्वी रंग की बहुत कुछ झलक वहाँ की कविताओं में दिखाई देने लगी। चिंतामणि भागवत पृष्ठ संख्या 156। पुष्ट जीव, मात्र भगवान के अनुग्रह का भरोसा रखने वाला जीव पुष्ट जीव है। उदाहरण, उपर्युक्त 3 मार्गों पुष्टि, मर्यादा, प्रवाह के अनुरूप ही जीव भी 3 प्रकार के कहे गए हैं, पुष्ट जीव, मर्यादा जीव और प्रवाह जीव। सूरदास पृष्ठ संख्या 55। पुष्टि, पुष्टि, भक्ति, जो पुष्टि प्राप्त होने पर भी अधिक पुष्टि पाकर भक्ति का सहगामी ज्ञान प्राप्त करने की योग्यता संपादित करते हैं, उनकी भक्ति पुष्टि, पुष्टि, भक्ति है। उदाहरण, तीसरा मार्ग पुष्टि, पुष्टि, भक्ति मार्ग उन पहले से पुष्टि प्राप्त लोगों का है जो अधिक पुष्टि पाकर भक्ति का सहगामी ज्ञान अर्जित करने की योग्यता संपादित करते हैं। सूरदास पृष्ठ संख्या 57। पुष्टि मार्ग, भगवान का अनुग्रह प्राप्त करना ही पुष्टि है, पोषणम तद अनुग्रह। इस सिद्धांत का प्रतिपादन वल्लभाचार्य जी ने किया। उनके द्वारा प्रतिपादित भक्ति मार्ग पुष्टि मार्ग है। उदाहरण, वल्लभाचार्य जी ने प्राणियों के अनुसरण के 3 मार्ग कहे हैं, पुष्टि मार्ग, प्रवाह मार्ग और मर्यादा मार्ग। सूरदास पृष्ठ संख्या 54। पूर्ण तत्वाभास, पूर्ण तत्वबोध, तत्व का समग्र ज्ञान। उदाहरण, पूर्ण तत्वाभास केवल कोरी बुद्धि की क्रिया से नहीं हो सकता, यह बात शंकराचार्य ऐसे दार्शनिक को भी माननी पड़ी थी। सूरदास पृष्ठ संख्या 126। पूर्ण भावुक, जीवन के मर्म स्पर्शी अंश का साक्षात्कार करने वाला भावुक है। पूर्ण भावुक वह होता है जो जीवन के प्रत्येक स्थिति के मर्म स्पर्शी अंश का स्वयं साक्षात्कार करता हुआ और अपनी शब्द साधना द्वारा श्रोता या पाठक को भी उसका साक्षात्कार कराता है। उदाहरण, पूर्ण भावुक वे ही है जो जीवन के प्रत्येक स्थिति के मर्म स्पर्शी अंश का साक्षात्कार कर सके और उसे श्रोता या पाठक के सम्मुख अपनी शब्द शक्ति द्वारा प्रत्यक्ष कर सके। गोस्वामी तुलसीदास पृष्ठ संख्या 53। पूर्ण रस, भावाभिव्यक्ति की वह स्थिति जिसमें कवि उसके द्वारा वर्णित पात्र, आलंबन और श्रोता या पाठक तीनों के हृदयों का पूर्ण सामंजस्य हो जाता है। उदाहरण, जहां आचार्यों ने पूर्ण रस माना है वहां 3 हृदयों का समन्वय चाहिए। आलंबन द्वारा भाव की अनुभूति प्रथम तो कवि में रहनी चाहिए, फिर उसके वर्णित पात्र में और फिर श्रोता या पाठक में। विभाव द्वारा जो साधारणीकरण कहा गया है वह तभी चरितार्थ हो सकता है। रसमीमांसा पृष्ठ संख्या 99। पूर्ण रस के अनुभूति। कवि द्वारा व्यंजित भाव में जब पाठक या श्रोता पूर्णतः लीन हो जाता है तब रस की पूर्ण अनुभूति मानी जाती है। उदाहरण, पूर्ण रस की अनुभूति अर्थात जिस भाव की व्यंजना हो उसी भाव में लीन हो जाना, क्यों उत्तम या श्रेष्ठ उसके भी कुछ विवेचन कर लेने चाहिए। चिंतामणि भाग 2 पृष्ठ संख्या 90। पूर्व राग। विप्रलंब सिंगार के चार भेदों में प्रथम पूर्व राग, मान, प्रवास, करुण, विप्रलंब के ये चार भेद होते हैं। रूप सौंदर्य आदि के श्रवण या दर्शन से परस्पर अनुरक्त नायक नायिका की वह मनोदशा जो उनके समागम के पहले हुआ करती है पूर्व राग है। आचार्यों ने इसके अंतर्गत 10 काम दशाओं को अभिलाष, चिंता, स्मृति, गुण कथन, उद्वेग, संप्रलाप, उन्माद, व्याधि, जड़ता और मरण का उल्लेख किया। आचार्य शुक्ल के अनुसार पूर्व राग की स्थिति में प्रेम की अनन्यता और एक निष्ठता नहीं होती। राग प्रेम पूर्व की वासनात्मक अवस्था है। राग विषय सामान्य होता है, जब वह विषयोन्मुख होता है तो अनुराग या प्रेम कहलाता है। पूर्व राग की स्थिति में काम दशाओं का विस्तृत उल्लेख उचित प्रतीत होता है। उदाहरण, किसी के रूप गुण आदि का उत्कर्ष सुनकर जो पूर्व राग होता है वह भी उत्तेजित राग ही रहता है। पूर्व राग की दशा में प्रेमी की अनन्यता और पूर्व पूर्ण एक निश्चयता नहीं रहती, वह पीछे प्राप्त होती है। रश्मि मानसा पृष्ठ संख्या 76। प्रकरण च्युत। संदर्भ से कटी हुई प्रकरण अनेकार्थी शब्दों के अर्थ को एक विशेष अर्थ में नियंत्रित करता है, इसलिए प्रकरण च्युत होने पर अनेकार्थी शब्दों का गलत अर्थ लगाया जा सकता है। उदाहरण, इस प्रयास का अभिप्राय यही है कि काव्य की उक्ति चाहे कितनी ही अतिरंजित, दूरहाड़ू और उड़ान वाली हो, उसका वाच्यार्थ चाहे कितना ही प्रकरण च्युत, व्यवहार और असंभव हो, उसकी तह में छिपा हुआ कुछ न कुछ योग्य और बुद्धि ग्राह्य अर्थ होना चाहिए। चिंतामणि भाग 2 पृष्ठ संख्या 116। प्रकरण संबद्धता। वाक्य में अनेकार्थी शब्द का प्रयोग होने पर भी जिन कारणों से उनकी अनेकार्थता का एक अर्थ में नियंत्रण किया जाता है, उन कारणों में से एक प्रकरण संबद्धता के आधार पर ही भोजन के प्रकरण में सैंधव का अर्थ सेंधा नमक और यात्रा के प्रकरण में घोड़ा माना जाता है। उदाहरण, जहाँ वाक्य या कथन में यह योग्यता, उपपन्नता या प्रकरण संबद्धता नहीं दिखाई पड़ती, वहाँ लक्षणा और व्यंजना नामक शक्तियों का आवाहन किया जाता है और योग्य तथा प्रकरण संबद्ध अर्थ प्राप्त किया जाता है। चिंतामणि भाग पृष्ठ संख्या 162। प्रकाशवाद। रहस्यवाद के विरोध में अभिव्यक्ति के लिए आचार्य शुक्ल द्वारा प्रयुक्त शब्द। उदाहरण, अवतारवाद मूल में तो रहस्यवाद के रूप में रहा, पर आगे चलकर वह पूर्ण प्रकाशवाद के रूप में पल्लवित हुआ। चिंतामणि भाग 2 पृष्ठ संख्या 126। प्रकृत काव्य। वह काव्य जिसे रस या भाव की मर्म स्पर्शी व्यंजना हो, या वह काव्य जिसमें भाव या रस की मार्मिक व्यंजना के साथ चमत्कार भी हो, शुक्ल जी के अनुसार प्रकृत काव्य है। उदाहरण, इनमें से प्रकृत काव्य हम केवल पिछली दो उक्तियों, जिसमें रस प्रधान हो या जिसमें रस और चमत्कार दोनों हो, में ही मान सकते हैं। जैसे ग्रंथावली भूमिका पृष्ठ संख्या 170। प्रकृत काव्य दृष्टि। सहज स्वाभाविक काव्य दृष्टि इस गोचर जगत के अनंत सौंदर्य के प्रति सहज रागात्मक आकर्षण को केंद्र में रखकर विकसित काव्य दृष्टि। उदाहरण, सारांश यह है कि जहाँ तक अज्ञात की ओर अनिश्चित संकेत मात्र रहता है, वहाँ तक तो प्रकृत काव्य दृष्टि रहती है, पर जब उसके आगे बढ़कर उस अज्ञात को अव्यक्त और अगोचर कहके उसका चित्रण होने लगता है, उसका पूरा ब्यौरा दिया जाने लगता है, तब लोकोत्तर दिव्य दृष्टि का दावा सा पेश हो जाता है और जान पड़ता है। चिंतामणि भाग 2 पृष्ठ संख्या 85। प्रकृतवादी। प्रकृति के प्रति अत्यधिक आकृष्ट कवियों को प्रकृतवादी कहते हैं। यह प्रकृतवाद का सामान्य अर्थ है। एक दूसरी दृष्टि से प्रकृतवाद यथार्थ का नग्न रूप है। जिन रचनाओं में जीवन का यथावत चित्रण किया जाता है उन्हें प्रकृतिवादी कहते हैं। प्रकृतवाद का एक तीसरा अर्थ है, इस दृष्टि से मानव प्रकृति का एक ही अंश, मानव प्रकृति का ही एक अंग है। उसके जीवन की गतिविधि भी प्राकृतिक नियमों के अधीन है। मानव अपनी विकास प्रक्रिया में अपने अस्तित्व और स्वार्थ के लिए उसी प्रकार संघर्ष में उलझा रहता है जिस प्रकार प्रकृति जगत के अन्य प्राणी। प्रकृतिवादी कला उसके इसी स्वार्थ मूलक संघर्ष का नग्न चित्रण करती है। आचार्य शुक्ल ने इस शब्द का प्रयोग प्रथम अर्थ में ही किया। उदाहरण, अब कोई वादी समझे जाने में कभी अपना मान नहीं समझते। उन्हें अब यह नहीं कहना पड़ता कि हम व्यक्तिवादी हैं, जैसा कि मूर्तिमत्तावादी कहा करते थे, हम रहस्यवादी या छायावादी हैं, जैसा कि इंग्लिस्तान आयरलैंड के उस मरे हुए आंदोलन के कवि कहा करते थे, अथवा हम प्रकृतिवादी हैं, जैसा कि जॉर्ज कॉल के विगत आंदोलन वाले कहा करते थे। रस में मानसा, पृष्ठ संख्या 333। प्रगीत, काव्य का एक भेद। जीवन को वास्तविकता से हटकर जब कवि द्वारा लोकोत्तर रूप व्यापार योजना के अतिरंजित चित्र प्रस्तुत किए जाते हैं, तो जैसे काव्यों के अतिरंजित एग्जेजरेटिव कहते हैं, प्रगीत काव्यों में यह प्रवृत्ति मुख्य रूप से पाई जाती है। इसलिए ऐसे काव्य को ही प्रगीतात्मक भी कहते हैं। उदाहरण, काव्य के दो स्वरूप हम देखने में आते हैं, अनुकृत या प्रकृत, या अनुरंजित या प्रगीत। गोस्वामी तुलसीदास, पृष्ठ संख्या 41। नोट, आचार्य शुक्ल ने यह वर्गीकरण पाश्चात्य दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर किया। पाश्चात्य विचारकों में अरस्तु ने ही प्रबंध या महाकाव्य को अनुकृत माना था। इसी दृष्टि से प्रगीत काव्य को अनुरंजित कह सकते हैं, क्योंकि उसमें जीवन की बाह्य वास्तविकता को अनुकृति न होकर कवि की भावना का ही उच्छलन अधिक होता है, अर्थात उसमें वर्ण्य वस्तु का यथार्थ नहीं वरन अनुरंजित रूप प्रधान होता है। उदाहरण, जबकि कल्प पड़े हुए प्रतिबिंब का ही आत्मा को बोध होता है, तब वह शुद्ध वेदांत की दृष्टि से आत्मा के साथ लगा हुआ अंतःकरण ही है और जड़ प्रकृति का ही विकार है। प्रकृति का विकार होने पर वह भी जगत के अंतर्भूत है। इस पद्धति पर चलने से हम वेदांत के प्रतिबिंबवाद पर पहुँचते हैं। जैसी ग्रंथावली भूमिका, पृष्ठ संख्या 143। उदाहरण, सूफियों के सिद्धांत पक्ष में प्रतिबिंबवाद था, वह एक प्रकार का सूक्ष्म सगुणवाद था। इसी से प्रकृति के प्रति उसमें बड़ी भावुकता थी। उनके प्रतिबिंबवाद के अनुसार जगत का जो यह स्थूल रूप है, उसी के अनुरूप पर अत्यंत सूक्ष्म स्वरूप आत्मा या परमात्मा का भी है। सूरदास, पृष्ठ संख्या 21। प्रतिभा, नए नए अर्थ की उद्भावना करने वाली काव्य शक्ति का नाम प्रज्ञा या प्रतिभा है। प्रज्ञा नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा मता, संस्कृत के आचार्य ने प्रतिभा को काव्य रचना का प्रधान कारण माना है। उदाहरण, प्रतिभा से मेरा अभिप्राय अंतःकरण की उस उद्भाविका क्रिया से है जिसके द्वारा कला विज्ञान आदि नाना क्षेत्रों में नई नई बातें या कृतियां उपस्थित हो जाती है। चिंतामणि भाग 1 पृष्ठ संख्या 22। प्रतिवर्तन, रिएक्शन, किसी एक प्रवृत्ति का अतिरेक होने पर उसके विरुद्ध होने वाली तीव्र प्रतिक्रिया। उदाहरण, यूरोप के समीक्षा क्षेत्र में उठते रहने वाले वादों के संबंध में यह बात पक्की समझनी चाहिए कि वे एकांकदर्शी होते हैं। वे या तो प्रतिवर्तन रिएक्शन के रूप में अथवा प्रचलित मतों में कुछ अपनी विलक्षणता या नवीनता दिखाने की झोंक में जोर शोर के साथ प्रकाशित किए जाते हैं। इससे उनमें अत्युक्ति को मात्रा बहुत अधिक होती है। चिंतामणि भाग 2 पृष्ठ संख्या 97। प्रति वस्तु उपमा, जहाँ उपमेय और उपमान वाक्यों में एक ही धर्म का कथन हो किंतु कथन की शब्दावली भिन्न हो, वहाँ प्रति वस्तु उपमा अलंकार होता है। यहाँ प्रति वस्तु से प्रतीक तात्पर्य प्रतीक वाक्य से है। नीचे उदाहरण से बात स्पष्ट हो जाएगी। चटक न छाणत घटत हूँ सज्जन नेह गंभीर, फीको परे न बरु फटई रंग्यो चूल रंग चीर। यहाँ सज्जनों का स्नेह चटक नहीं छोड़ता तथा चोल रंग में रंगा चीर फीका नहीं पड़ता, ये दो वाक्य हैं। दोनों में सादृश्य फीका न पड़ना व्यंजित है। दोनों में एक ही धर्म चटकीलापन न छोड़ना का कथन, किंतु कथन की शब्दावली भिन्न है। अतः यहाँ प्रति वस्तुपमा अलंकार है। उदाहरण, प्रति वस्तुपमा हेतु प्रेक्षा विरोध श्लेष एकावली इत्यादि अलंकार भी कहीं कहीं पाए जाते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास, पृष्ठ संख्या 667। प्रतीकत्व, परोक्ष वस्तु विचार या भाव के प्रतिनिधित्व की क्षमता, उदाहरण के हंस में निर्मलता से एवं सदसद विवेक के प्रतीकत्व की क्षमता। उदाहरण, अतः सच्ची परख वाले कवि अप्रस्तुत उपमान के रूप में जो वस्तुएं लाते हैं उनमें प्रतीकत्व होता है। चिंतामणि भाग दो पृष्ठ संख्या 111। प्रतीकवादी सिंबुलिस्ट। सन 1885 में फ्रांस में प्राकृत एवं यथार्थवादियों के फोटोग्राफिक चित्रणों के विरुद्ध उठ खड़ा होने वाला काव्य आंदोलन, जो विशिष्ट वस्तुओं, ध्वनियों और शब्दों को प्रतीकात्मक अर्थ प्रदान करता था, प्रतीकवादी विचारों और भावनाओं को सीधे व्यक्त न करके प्रतीकों के माध्यम से व्यक्त करने पर बल देते थे। सन 1886 ईस्वी में कवि जिन मोरे आस ने फिगारो ली फिगारो नामक पत्र में प्रतीकवाद का घोषणा पत्र प्रकाशित किया था। प्रतीकवादियों के अनुसार दृश्य जगत वास्तविक जगत का आभास मात्र है। वास्तविक जगत नित्य और अलौकिक है। नित्य और अलौकिक जगत के संबंध में प्रतीकात्मक प्रयोग द्वारा कुछ कहा जा सकता है। प्रत्यक्ष जगत की अभिव्यक्ति में कुंठा, निराशा और जुगुप्सा का समावेश आवश्यक है। प्रतीकवादी कवियों में रिम्बो, मालार्मे, मेंटरलिंग, क्लाउडेल, बोदलेयर आदि प्रसिद्ध है। इसके लिए डिकेडेंट शब्द का प्रयोग भी होता है। उदाहरण, इन परनेसियन के पीछे सन 1885 ईस्वी में प्रतीकवादियों, सिंबुलिस्ट और डिकेडेंट्स का एक संप्रदाय फ्रांस में खड़ा हुआ, जिसने अनूठे रहस्यवाद और भावोन्मादमयी भक्ति का सहारा लिया। चिंतामणि भाग दो पृष्ठ संख्या 108। प्रतीक रहस्यवाद। प्रतीकात्मक पद्धति के सहारे परोक्ष अनुभूतियों को व्यक्त करने वाली फ्रांसीसी काव्य प्रवृत्ति। उदाहरण, ब्लेक के 85 वर्ष पीछे 1885 में जो नया प्रतीक रहस्यवाद उठा, उसकी प्रवृत्ति भी प्रायः यही चली जाती है। कल्पना को एक प्रकार का अलआम कहा जाता है। एक की कल्पना का दूसरे के अंतःकरण में अज्ञात रूप में प्रवेश जताना, बैठे बैठे अन्य देश और अन्य काल की घटनाएं देखना, असीम ससीम का राग अलापना, ये सब बातें आजकल के रहस्यवादी कवि ईट्स, डब्ल्यू बीट्स की पुस्तक आइडियाज ऑफ गॉड एंड इविल में मौजूद है। चिंतामणि भाग दो पृष्ठ संख्या 120। प्रतीति, मन बिंबों का बोध विभावन। उदाहरण, कल्पना में उठे हुए रूपों की प्रतीति मात्र को ज्ञान कहना उसे ऊंचे दर्जे को पहुंचाता है। चिंतामणि भाग दो पृष्ठ संख्या 181। प्रतीत, जहाँ प्रसिद्ध उपमान को उपमेय बना दिया जाता है वहाँ प्रतीप अलंकार होता है। प्रतीप का अर्थ है उल्टा। उपमेय उपमान के मान्य संबंध को उलट देने पर प्रतीप का चमत्कार उत्पन्न होता है। उदाहरण, मुख अनुहरिया केवल चंद समान प्रदीप, प्रतीप गोस्वामी तुलसीदास पृष्ठ संख्या 98। प्रतीयमान उत्प्रेक्षा। असीम अर्थात ब्रह्म अनंत आनंद स्वरूप है। प्रतीयमान उत्प्रेक्षा। शास्त्रकारों ने उत्प्रेक्षा के दो प्रधान भेद दिए हैं, वाच्य उत्प्रेक्षा, प्रतीयमान उत्प्रेक्षा। जहाँ उत्प्रेक्षा वाची शब्द इव, मानो, जानो आदि प्रयुक्त हो तो वहाँ वाच्य उत्प्रेक्षा होती है, और जहाँ उत्प्रेक्षावादी शब्दों का प्रयोग न हो वहाँ प्रतीयमान उत्प्रेक्षा होती है। उदाहरण, असीम अर्थात ब्रह्म अनंत स्वरूप और उस बालिका में भी अपरिमित आनंद का आभास मिलता है। अतः यह कहना ठीक है कि मानो उस असीम बाल्य जीवन के भीतर असीम आनंद स्वरूप ब्रह्म ही आ बैठा। इसलिए प्रतीयमान उत्प्रेक्षा भी अनूठी है, क्योंकि इसके भीतर अधिक अलंकार के वैचित्र की भी झलक है। चिंतामणि भाग दो पृष्ठ संख्या 191। प्रत्यक्ष, इंद्रियों द्वारा सीधे सीधे उपलब्ध। उदाहरण, गंभीर भाव प्रेरित काव्य में कल्पना प्रत्यक्ष और अनुमान के दिखाए मार्ग पर काम करती है। चिंतामणि भाग दो पृष्ठ संख्या 159। प्रत्यक्ष रूप विधान। प्रत्यक्ष अनुभव किया जाने वाला बाहरी रूप विधान, रमणी के मुख का लावण्य, वनस्थली की सुषमा, नदी का शैल, तटी की रमणीयता, कुसुम विकास की प्रफुल्लता, ग्राम दृश्यों की सरल माधुरी, यह सब प्रत्यक्ष रूप विधान है। उदाहरण, भावुकता की प्रतीक्षा करने वाले मूल आधार या उपादान प्रत्यक्ष रूप ही है। दसवांसा पृष्ठ संख्या 261। प्रत्यक्षाश्रित स्मृति या प्रत्यभिज्ञान। अल्पांश की प्रत्यक्ष अनुभूति के आधार पर जगने वाला पूर्णांश की स्मृति। प्रत्यभिज्ञान में थोड़ा सा अंश प्रत्यक्ष होता है और बहुत सा अंश उसी के संबंध से स्मरण द्वारा उपस्थित होता है। दसवांसा पृष्ठ संख्या 279। प्रत्यनीक, जहाँ शत्रु का प्रतिकार करने में असमर्थ होने पर वैर निवारण के लिए शत्रु के पक्ष वालों का तिरस्कार किया जाता है। प्रत्यनीक अर्थात शत्रु का प्रतिनिधि अलंकार होता है। उदाहरण, वसा लंके बरनई जग झीनी, तेहिते अधिक लंक वह खीनी, परिहस पियर भय ते ही बसा, लिए डंक लोघन कह डसा। जैसे ग्रंथाली भूमिका पृष्ठ संख्या 115। प्रत्यभिज्ञा, कभी के देखे हुए व्यक्ति या पदार्थ को कुछ दिनों बाद फिर देखने पर होने वाला ज्ञान वह अमुक व्यक्ति का पदार्थ है, प्रत्यभिज्ञा कहलाता है। प्रत्यभिज्ञा दर्शन इसी प्रत्यभिज्ञान ज्ञात वस्तु को फिर से जानना पर आधारित है। जिस प्रकार कोई सुंदरी समीप खड़े प्रीतम को दूती के कथन से उसका अभिज्ञान प्राप्त करके परम आह्लाद का अनुभव करती है, उसी प्रकार साधक गुरु के उपदेश से महेश्वर के गुणों का प्रत्यभिज्ञान करके अहम महेश्वर का बोध प्राप्त करता है और शिवत्व लाभ करके आनंद मग्न होता है। उदाहरण, यमुना को देकर प्रत्यभिज्ञा का उदय हम इस रूप में जाते हैं। मधुर मलय में यही गूंजी थी एक वह जो तान, कृष्ण घन अलक में कितने प्रेमियों का यह पुलक समाया था। हिंदी साहित्य का इतिहास पृष्ठ संख्या 717। प्रत्ययवाद आइडियलिज्म, दर्शन का वह सिद्धांत जो यह मानता है कि मूल तत्व सहित प्रत्येक वस्तु का चरम अधिष्ठान विज्ञान चित्त या आत्मा है। संसार में जो कुछ है वह चेतना का प्रकाश या अभिव्यक्ति मात्र है, अर्थात चरम तत्व चित्त या आत्मा की ही अभिव्यक्ति है, भूत तत्व या पदार्थ की आत्मा से पृथक सत्ता नहीं है। उदाहरण, विलायती काव्य क्षेत्र में सुख सौंदर्य की भावना को अज्ञात और अव्यक्त के क्षेत्र में ले जाकर पूर्णता पर पहुंचाने का इशारा किधर से मिला, थोड़ा यह भी देख लेना चाहिए। यहाँ इशारा जर्मन दार्शनिकों के प्रत्ययवाद से मिला, जिसमें प्रवर्तक कांट थे। उन्होंने मनुष्य के ज्ञान की विस्तृत परीक्षा करके यह प्रतिपादित किया कि इंद्रियों की सहायता से मन को जिन रूपों का बोध होता है वह उसी के रूप है, किसी बाह्य वस्तु के नहीं। चिंतामणि भाग 2 पृष्ठ संख्या 79। प्रबंध काव्य, श्रव्य काव्य का वह भेद जिससे किसी आख्यान या वृत्ति को आधार बनाकर घटनाओं का संबंध श्रृंखला का निर्वाह करके हृदय स्पर्शी प्रसंगों की योजना के साथ मानव जीवन का एक पूर्ण चित्र अंकित होता है, प्रबंध काव्य के भाव व्यंजना परिस्थिति के अनुकूल होती है। प्रबंध काव्य 2 का हो सकता है, इतिवृत्तात्मक और रसात्मक। रसात्मक प्रबंध काव्यों में भी बीच बीच में इतिवृत्त आता है, किंतु यदि संपूर्ण आख्यान रसात्मक है तो बीच के नीरस इतिवृत्त भी रसात्मक प्रतीत होते हैं। महाकाव्य और खंड काव्य दोनों ही प्रबंध काव्य की सीमा में आते हैं। उदाहरण, प्रबंध काव्य में मानव जीवन का एक पूर्ण दृश्य होता है, उसमें घटनाओं की संबंध श्रृंखला और स्वाभाविक क्रम से ठीक ठीक निर्वाह के साथ साथ हृदय को स्पर्श करने वाले, उसे नाना भावों का रसात्मक अनुभव कराने वाले प्रसंगों का समावेश होना चाहिए। इतिवृत्त मात्र के निर्वाह से रसानुभव नहीं कराया जा सकता है, उसके लिए घटना चक्र के अंतर्गत ऐसी वस्तुओं और व्यापारों को प्रतिबिंबवत चित्रण होना चाहिए जो श्रोता के हृदय में रसात्मक तरंगे उठाने में समर्थ हो। जैसी ग्रंथाली भूमिका पृष्ठ संख्या 67। एक बड़े प्रबंध काव्य में प्राकृतिक दृश्यों का श्रोता के भाव के आलंबन रूप में वर्णन भी आवश्यक है, और यह स्वरूप उन्हें तभी प्राप्त हो सकता है जब उनका चित्रण ऐसे ब्यौरे के साथ हो कि उनका बिंब ग्रहण हो, उनका पूर्ण स्वरूप पाठक या श्रोता की कल्पना में उपस्थित हो जाए। रसमीमांसा पृष्ठ संख्या 112। प्रबंध और मुक्तक में यही बड़ा भारी भेद होता है। मुक्तक में किसी भाव को रस पद्धति के अनुसार अच्छी व्यंजना हो गई बस, पर प्रबंध में इस बात को भी ध्यान रहता है कि वह भाव परिस्थिति के अनुरूप है या नहीं। जैसे ग्रंथाली भूमिका पृष्ठ संख्या 69। मानस एक प्रबंध काव्य है। प्रबंध काव्य में कवि लोग पात्रों की प्रकृति और शील का चित्रण भी किया करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास पृष्ठ संख्या 46। नोट, आचार्य शुक्ल ने प्रबंध काव्य का जो स्वरूप निर्धारित किया है वह श्रेष्ठ प्रबंध काव्यों को दृष्टि में रखकर अपने काव्य विवेक के अनुसार किया है। संस्कृत के एक आचार्यों ने प्रबंध काव्य का इतना स्पष्ट और सटीक स्वरूप निर्धारित किया था। प्रभाववादी, ऐसे समीक्षक जो रचना के समग्र प्रभाव के आधार पर उसकी श्रेष्ठता का निर्णय करते हैं, ऐसी आलोचना में विशेष मानसिक स्थिति में सहृदय पाठक के चित्त पर रचना के प्रभाव और उसके प्रति उसकी प्रतिक्रिया को विशेष महत्व होता है। उदाहरण, कुछ कुछ इसी प्रकार की दशा रीति बद्धता के प्राधान्य की दशा जब यूरोप में हुई और किसी काव्य की उत्तमता का निर्णय साहित्य की बंधी हुई रीति विधि के अनुसार होने लगा, तब प्रभाववादी उठ खड़े हुए जिन्होंने सुझाया कि किसी काव्य की उत्तमता की सच्ची परख यही है कि वह हृदय पर कैसा प्रभाव डालता है, उससे किस प्रकार की अनुभूति उत्पन्न होती है। चिंतामणि भाग 2 पृष्ठ संख्या 92। प्रभाव साम्य, जहाँ उपमेय और उपमान में रूप गुण की समता न होकर मात्र प्रभाव की समता हो, अर्थात जिस प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करने की क्षमता उपमेय में हो उसी प्रकार का प्रभाव जगाने में उपमान में भी समर्थ हो, वहाँ प्रभाव साम्य माना जाएगा। उदाहरण, छायावाद बड़ी सहृदयता के साथ प्रभाव साम्य पर ही विशेष लक्ष्य रखकर चला है। कहीं कहीं तो बाहरी सादृश्य या साधर में अत्यंत अल्प या न रहने पर भी आभ्यंतर प्रभाव साम्य लेकर ही अप्रस्तुतों की सन्निवेश कर दिया जाता है। हिंदी साहित्य का इतिहास पृष्ठ संख्या 670। बड़े हर्ष की बात है कि हिंदी का वर्तमान नए ढंग की कविताओं में विशेषतः प्रभाव साम्य पर ही दृष्टि रखी जाती है। उदाहरण, चिंतामणि भाग 2 पृष्ठ संख्या 221। प्रमा, निश्चयात्मिका बुद्धि द्वारा प्राप्त ज्ञान, तर्क संबंधी ज्ञान। प्रमा, निश्चयात्मिका बुद्धि द्वारा प्राप्त ज्ञान भिन्न भिन्न व्यक्तियों के परस्पर संबंध का ज्ञान अर्थात जाति का संगीत ग्रह। चिंतामणि भाग 2 पृष्ठ संख्या 171। प्रमेयत्व, प्रमा बोध, जहाँ जो जैसा है उसे उसी रूप में जानना। प्रमेय, यथार्थ ज्ञान का विषय। प्रमेयत्व, यथार्थ ज्ञान की स्थिति। उदाहरण, केवल वस्तुत्व या प्रमेयत्व जिसमें हो वह अलंकार नहीं है, अलंकार में रमणीयता होनी चाहिए। रसमीमांसा प्रश्न संख्या 359। प्रवाह जीव, सांसारिक सुखों की प्राप्ति में लगा रहने वाला जीव प्रवाह जीव है। उदाहरण, उपर्युक्त तीन मार्गों पुष्टि मर्यादा प्रवाह के अनुरूप ही जीव भी तीन प्रकार के कहे गए हैं, पुष्टि जीव, मर्यादा जीव और प्रवाह जीव। सूरदास पृष्ठ संख्या 55। प्रवाह नित्यता, यह विराट विश्व प्रवाह रूप में नित्य है, इसमें व्यष्टि स्तर पर रूपाकार में विकार होता है किंतु समष्टि रूप में इसका प्रवाहमान स्वरूप नित्य है, इस भावना को प्रवाह नित्यता कहते हैं। उदाहरण, जब उसकी मनुष्य जाति की बुद्धि इस विराट विश्व की ओर देखती है तब उसकी अनंतता और प्रवाह नित्यता का अनुमान बंधता है। सूरदास पृष्ठ संख्या 30। प्रवाह पुष्टि भक्ति, संसार के प्रवाह में पड़े रहकर भी ऐसे कर्म करते हैं जिनसे भगवान की प्राप्ति हो सकती है, उसकी उनकी भक्ति प्रवाह पुष्टि भक्ति है। उदाहरण, इनमें से प्रथम मार्ग प्रवाह पुष्टि भक्ति मार्ग में वे कहे जा सकते हैं जो संसार के प्रवाह में पड़े मैं और मेरा करते हुए भी ऐसे कर्म करते जाते हैं जिनसे भगवान की प्राप्ति हो सकती है। सूरदास पृष्ठ संख्या 57। प्रवाह मार्ग, लोक के प्रवाह में पड़कर लौकिक सुख भोग के हेतु प्रयत्न करते रहना प्रवाह मार्ग है। उदाहरण, वल्लभाचार्य जी ने प्राणियों के अनुसरण में तीन मार्ग कहा है, पुष्टि मार्ग, प्रवाह मार्ग और मर्यादा मार्ग। सूरदास पृष्ठ संख्या 54। इसी प्रकार आज प्रवेशक, इसका शाब्दिक अर्थ है परिचायक, यह भी एक प्रकार का विषकंभक ही है। प्रवेशक में भी निम्न पात्रों द्वारा अंतराल में घटित हो चुके या आगे चलकर घटित होने वाले प्रसंगों को सूचित किया जाता है या पहले अंक के आरंभ या अंतिम अंक के अंत में प्रयुक्त होता है। उदाहरण, इसी प्रकार आजकल विषकंभक और प्रवेशक का काम देने वाले दृश्य तो रखे जाते हैं पर ये नाम हटा दिए गए हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास पृष्ठ संख्या 549। प्रस्तावना, आमुख के दो भेदों प्रस्तावना और स्थापना में से एक है। नाटक आरंभ होने के पहले सूत्रधार, नटी, परिपार्श्वक या विदूषक के साथ प्रस्तुत विषय पर विचित्र उक्तियों द्वारा वार्तालाप करते हुए सामाजिकों की उत्कंठा बढ़ा देता और बड़े कौशल से नाटक आरंभ करा देता है। इस प्रक्रिया को आमुख कहते हैं। आमुख के दो भेद होते हैं, प्रस्तावना और स्थापना। वस्तुतः जिन युक्तियों के प्रयोग से सूत्रधार नाटक का चमत्कारिक आरंभ कराता है उन्हें प्रस्तावना कहते हैं। कथोद्घात, प्रवृत्तक, प्रयोगातिशय इसके अवान्तर भेद हैं। उदाहरण, भारतेंदु जी ने ही नील देवी और सती प्रताप में प्रस्तावना नहीं रखी है, हाँ आरंभ में यशोगान या मंगलगान रख दिया। हिंदी साहित्य का इतिहास पृष्ठ संख्या 549। प्रस्तुत वस्तु, वर्ण्य वस्तु वह वस्तु जिसका वर्णन किया जाए। उदाहरण, विभाव पक्ष के ही अंतर्गत हम उन सब प्रस्तुत वस्तुओं और व्यापारों को भी लेते हैं जो हमारे मन में सौंदर्य माधुर्य दीप्ति कांति प्रताप ऐश्वर्य विभूति इत्यादि की भावनाएं उत्पन्न करते हैं। रसमीमांसा पृष्ठ संख्या 293। प्रहेलिका, पहेली, जहां वाक्य रचना में किसी पद या अक्षर को छोड़कर या किसी अक्षर को अपनी ओर से जोड़कर पूरे वाक्य को पहेली बना दिया जाए वहां प्रहेली का अलंकार होता है। श्रुताक्षरा दत्ताक्षरा आदि इसके अनेक भेद माने गए हैं। कवि लोग अपनी चतुराई दिखाने के लिए स्लेस कूट प्रहेलिका आदि छाया करते हैं, पर परम भावुक गोस्वामी जी ने ऐसा कहीं नहीं किया। एक स्थान पर ऐसी युक्ति पटुता है पर वह आख्यानगत पात्र का चातुर्य दिखाने के लिए ही है। लक्ष्मण से सुपर्णखा के नाक काटने के लिए राम इस प्रकार का इशारा करते हैं। वेद नाम कहीं अंगुरिन खंड आकाश पठियो सुपर्णखा ही लखन के पास। गोस्वामी तुलसीदास पृष्ठ संख्या 102। प्रातिभासिक सत्ता, वह सत्ता जो प्रतीति काल में सत्य प्रतीत होती है किंतु बाद में बाधित हो जाए। उदाहरण के साथ अंधकार में रज्जु को देखकर सर्प की प्रतीति प्रातिभासिक है। प्रतीति काल में रज्जु के स्थान पर सर्प की सत्ता पूर्णतः सत्य भासित होती है किंतु प्रकाश होने पर रज्जु का बोध होता है और यह रज्जु ज्ञान सर्प ज्ञान को बाधित करता है। इस प्रकार की सत्ता प्रातिभासिक सत्ता होती है। प्रासंगिक उदाहरण, ईशासा के आधार पर ही मंगलमयी ज्योति जो धर्म के रूप में जगत की प्रातिभासिक सत्ता के भीतर आनंद का आभास देती है और उसकी रक्षा द्वारा सत्य का अपने नित्यत्व का बोध कराती है। गोस्वामी तुलसीदास पृष्ठ संख्या 23। प्रासंगिक आधिकारिक कथा वस्तु इति वृत्त के सहायक इति वृत्त को प्रासंगिक कहते हैं। रामायण में सुग्रीव को इति वृत्त प्रासंगिक है। उदाहरण, हमारे आचार्यों ने कथा वस्तु दो प्रकार की कही, आधिकारिक और प्रासंगिक। जैसे ग्रंथाली भूमिका पृष्ठ संख्या 72। प्रेम रति श्रृंगार रस का स्थायी भाव, स्त्री में पुरुष और पुरुष में स्त्री की प्रीति ही श्रृंगार रस है। उदाहरण, पर प्रेम एक ही कोटि के दो सत्ताओं का योग है, इससे कहीं अधिक गुढ़ और पूर्ण होता है। चिंतामणि भाग 1 पृष्ठ संख्या 86। उदाहरण, अब एक प्राणी के प्रति दूसरे प्राणी के लोभ का प्रसंग सामने आता है जिसे प्रीति या रीति कहते हैं। उदाहरण पृष्ठ संख्या चिंतामणि भाग 1 पृष्ठ संख्या 86। प्रेमाख्यानी रंग स्वच्छंद प्रेम की कहानी वाले आख्यानों का स्पर्श, इससे स्पष्ट है कि प्रेमाख्यानी रंग रोमांटिक टर्न देने के लिए जयदेव के प्रसन्न राघव नाटक का अनुसरण करके धनुष यज्ञ के प्रसंग में फुलवारी के दृश्य का सन्निवेश किया। गोस्वामी तुलसीदास पृष्ठ संख्या 47। प्रेयस, जहाँ एक भाव किसी दूसरे भाव का अंग बन जाता है वहाँ प्रेयस अलंकार माना जाता है। उदाहरण, इस संबंध में एक शंका यह उठाई जा सकती है कि हर्ष और विषाद की यह संधि भाव क्षेत्र में रखी जानी चाहिए या प्रेयस आदि अलंकारों में ये भाव रस क्षेत्र के भीतर ही माने जाएंगे क्योंकि ये किसी दूसरी ही वस्तु या भाव के अंग होकर नहीं आए हैं। रसमीमांसा पृष्ठ संख्या 247। प्रेषणीयता कम्युनिकेबिलिटी, कवि द्वारा काव्य के कथ्य को पाठक तक पहुंचाने का व्यापार। उदाहरण, गोस्वामी जी ने यद्यपि अपनी रचना स्वांत सुखाए बताई है पर वे कलाकृति के अर्थ और प्रभाव को प्रेषणीयता कम्युनिकेबिलिटी को बहुत ही आवश्यक मानते थे। गोस्वामी तुलसीदास पृष्ठ संख्या 48। प्रोषित पतिका, किसी कार्यवश प्रियतम के परदेश चले जाने के कारण काम वेदना से व्यथित नायिका प्रोषित पतिका कहलाती है। उदाहरण, राजा के निकल जाने के पीछे हम उसे प्रोसित पतिका के उस निर्मल स्वरूप में देखते हैं जिसका भारतीय काव्य और संगीत में प्रधान अधिकार रहा है, जैसे ग्रंथावली भूमिका पृष्ठ संख्या 35।